बोलने लगी। प्रिय भक्तगण, बहनों, बच्चों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत का एक श्लोक जो श्री महाराज जी के जीवन पर ठीक उतरता है, जिसे मैं प्राय बहुत ही याद करती हूँ, श्रवण करती हूँ, स्मरण करती हूँ। ये श्लोक गोपियों द्वारा श्री कृष्ण जी को कहा गया था। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विवीरितम कलम शाप हम श्रवण मंगल श्री मदात भूवि गुणंती ए भूरिदा जनाहा। प्रभु, तुम्हारी लीला कथामृत स्वरूप है, ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है, वह पाप पुंज को हरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है, वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। प्रिय भक्तों, श्री महाराज जी के जीवन को लेकर हम देखते हैं कि अगर हम उनके पूरे जीवन को जितना उन्होंने कुल्लू में आकर व्यतीत किया, उससे पूर्व तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम उतने जीवन को भी उनके द्वारा किए गए भक्ति, ज्ञान, दान, प्रेम, दया, तो हमारा जीवन अवश्य ही कल्याणकारी सिद्ध होगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और हम अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो आजकल हम देखते हैं कि प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ श्री महाराज जी के विषय में आपको बताने जाती हूँ, बताती रहती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है योग क्षेम भाव महम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे पर विश्वास करता है, मेरे प्रति अर्पित हो जाता है, उसका योग और क्षेम मैं बहन करता हूँ। अर्थात योग वो वस्तु है जो हमारे पास पहले से विद्यमान है, जैसे किसी के पास विद्या धन है, ज्ञान धन है, प्रेम धन है, असली धन जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और क्षेम जो मेरे भक्त के पास नहीं है, जिसने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं है, उसके लिए कोई अपना पैसा नहीं जोड़ा है, कोई घर नहीं है, बाल नहीं है, उसके लिए मैं उसका भी अगले जीवन का, अगले आने वाले समय में उसका सारा भार वहन करता हूँ। ये गीता का सबसे सुंदरतम श्लोक है, और इसके साथ ही मुझे एक और गीता का श्लोक याद आता है, सर्व धर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। गीता 18 अध्याय में भगवान अंत में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सब धर्मों को, सब रीति रिवाजों को, सब क्रियाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तेरे सब पापों को खत्म कर दूंगा और तुझे पवित्र बना दूंगा। अगर आज के युग में, आज के समय में हम लोग इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने सम्मुख रखते हुए उनके चरणों में अपने को समर्पित करें, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि श्री महाराज जी भी भगवान के एक अंशावतार हैं, अगर हम उन्हीं के प्रति थोड़ा आने समर्पित हो जाते हैं, तो वो हमारा योगक्षेम अवश्य ग्रहण करते हैं। तो मैं आज अगली कथा बताती हूँ, माँ देवी तीर्थ के संत जिन्हें अभी तक हम वैष्णो देवी बाबा के रूप में देख रहे थे, उन 1963 के लगभग अंत में मैं अखाड़ा बाजार कुल्लू स्थित शिव मंदिर पीपल के चबूतरे पर प्रकट हुए इस दृष्टांत को आपको बताना चाहूंगी कि उनका कोई परिचय नहीं मिला है, पता नहीं बाबा जी कौन थे, कहां से आए, कोई नहीं जानता। इस चबूतरे पर बैठे बाबा ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय करते हुए अपनी दिनचर्या पूर्ण करते थे। सर्दियां आरंभ हो गई थी। बाबा एक पतली चद्दर थोड़ी सी लकड़ियों के धुएं के सहारे रात दिन इस खुले मूत्रे पर विराजमान रहते थे। अभी भक्तों ने भी इनकी महिमा नहीं पहचानी थी, अतः भोजन आदि की भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। एक पंडित श्री राम जी बहुत आते जाते थे। महाराज जी को इस स्थिति में देखकर एक दिन उनके निकट गए और प्रणाम करके पूछा, महाराज आपके भोजन आदि का क्या प्रबंध होता है? श्री महाराज जी ने निर्लिप्त भाव से कहा, भोजन का क्या है, मिल गया तो खा लेता हूँ। और भगवत कृपा से पंडित जी के माध्यम से बाबा के भोजन का प्रबंध हो गया। अड़ोस पड़ोस व दूर की माताएं भोजन पकाकर बाबा के लिए बड़े प्यार दुलार से लाती और बाबा जी भी वात्सल्य भाव से इस भोजन का अंश मात्र ग्रहण करके शेष अन्य साधु संतों में बांट देते थे। बाबा का कहना था कि कभी कभी अन्न और सब्जियों के ढेर लग जाते और हर माँ की इच्छा रहती थी कि बाबा इनका पकाया भोजन अवश्य ग्रहण करें। बाबा प्रातः 3 बजे के लगभग उठकर व्यास नदी में स्नान आदि करके पीपल के चबूतरे की सफाई करते, गोबर से प्रतिदिन चबूतरे को लीपते और फिर मंदिर में पूजा करते। एक महिला का कहना है कि बाबा की भाव भक्ति देखकर दंग रह गई थी। एक बार प्रातःकालीन आरती के समय बाबा भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती हुई उनके चरणों तक छू गई। फिर भी उनका मन व प्राण प्रभु अर्चना में तलीन रहा, लेकिन बाबा की वह भाव भक्ति गुप्त रूप में ही थी। बहुत ही कम भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा ये सब भाव भक्ति देखने का। बाबा जी अपनी भाव भक्ति को प्राय गुप्त ही रखते थे। भक्ति का दिखावा तो उन्हें छू तक नहीं गया था। उन दिनों आसपास में नल नहीं थे। गर्मी के दिनों में बाबा व्यास नदी से पानी भर लाते और सड़क में आने वाले लोगों को जल पिलाते। गर्मी में लोग ठंडा जल पीकर चैन की सांस लेते। जल पिलाते हुए जनता के प्रति इनकी सेवा जनार्दन की सेवा ही थी। मंदिर को बहुत सदा स्वच्छ बनाए रखते। आने जाने वाले भक्तों को चाय दूध पिलाते। पूर्णमासी और काशी को वे रात्रि भर अखंड कीर्तन करते। इस कीर्तन में अड़ोस पड़ोस के लोग भी सम्मिलित होकर लाभ उठाते थे। इन्हीं दिनों ऋषि जी जो किशोर अवस्था में थे उनके पास आया करते। पास की दुकान में वे कपड़े सिलकर रोजी चलाते थे। उन्हें बाबा बहुत प्यार से बिठाते और माखन चोर कहकर पुकारते। ऋषि जी का कहना है कि वे बाबा के प्यार में बंध गए कि उन्हें बाबा को देखे बिना चैन नहीं आता था। घर में पिता का भाव होने से कई प्रकार की उलझने बनी थी, परंतु वे बाबा के प्रेम में सब कुछ भूल गए। श्री दिनो राम जी नारायण जी जो पुलिस कर्मचारी होने के नाते अखाड़ा बाजार में कार्यरत थे, उनका कहना है कि मैं प्रतिदिन जब काम पर आता तो चबूतरे पर आसन जमाए बाबा को देखता रहता। एक दिन अचानक बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास जा बैठा तो बाबा ने कहा, दूध पियोगे? मैंने जवाब दिया, बाबा आप क्या दूध पिलाएंगे, मैं आपको दूध पिलाता हूँ। वाक्य पूरा होने से पहले ही बाबा ने दूध का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया और दूध पीकर मुझे ऐसा लगा मानो आज अमृत पी लिया। बस फिर क्या था, मैं रोज बाबा के पास जा बैठता, सत्संग होता और दूध पीकर चुपचाप आ जाता। लाला साधु राम खेरा जी जो मंदिर के कैशे, उनकी प्रथम भेंट बाबा से वहीं पर हुई थी। मैं कहते हैं कि बाबा जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। सर्दी के दिनों में टाट बोरी की बनी कुटिया में सर्दी सहन करते हुए जन सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी से कोई लालकड़ी या कपड़े की मांग नहीं की। नंगे बदन केवल एक लंगोटी और सूती चादर ओढ़े हुए राखे की ठंड में सेवारत रहते। कई बार सर्दी के कारण उनका शरीर ठंडा भी हो जाता था, परंतु उनका भाव तथा प्रेम प्रभु के श्री चरणों में अर्पित था। ईश्वर अपने ऐसे भक्त की संभाल प्रयास कर लिया करते हैं। ऐसे समय ये कोई भक्त लकड़ी लेकर आ जाता तो कोई बिस्तर कंबल आदि लाकर बाबा के ठंडे शरीर को गर्म करने का प्रयत्न करते। भक्त का श्रेय और प्रेय स्वयं भगवान ही देखते हैं, जिसकी उस पर सच्चे दिल से आस्था बनी रहती है। कई राधा स्वामी मतालंबी भी उनकी सेवा में जुड़े रहते और उनका आश्वासन प्राप्त करते। तीर्थ स्थापना की खोज। इसी तरह जनता जनार्दन की भीड़ बढ़ती गई और बाबा को एकांत वास की इच्छा हुई। सन 1965 में आरंभ में ही बाबा ने अपने भक्त दीनू राम से कहा, नारायण चलो कहीं निर्जन में कुटिया बनाएं। भक्त बाबा का आदेश पाकर उनके साथ एक स्थान रामाबाई पर आया। वहाँ से कुछ उतर कर वर्तमान शिव स्थान के पास एक चट्टान के नीचे गुफा बनाकर डेरा डाल दिया, जिसके दाई वो पानी का नल बह रहा था जो जोखू नाला के नाम से जाना जाता था। इस छोटी सी गुफा में बाबा रहने लगे। भक्तों ने मिलकर शीघ्र दीवार खड़ी कर दी, उबड़ खाबड़ जगह को समतल बनाकर चबूतरा तैयार कर दिया, जहाँ पर धूना लगाया गया। धूना के एक और बाबा बाद दूसरी तरफ उनके भक्त, जिनको कार्यरत बाबा रात के समय भक्तों से सत्संग करते। कई बार भक्त लोग रात वही ठहर जाते, बाबा इनकी सेवा जी मान से करते। कभी चाय बनाते तो कभी खिचड़ी बनाकर खिलाते। इस प्रकार दिन व्यतीत हुए। अब एक और छोटा सा एपिसोड है शिव मंदिर की स्थापना। एक दिन सायंकाल बाबा धूने के पास बैठे थे। धूने के सामने पंचमुखी नागफन उठाए बाबा को देख रहे थे। बाबा ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और कहा, प्रभु मेरे पास ये शरीर है जो आपको अर्पण करता हूँ, लेकिन दूसरे क्षण आवाज आई, यहाँ महादेव जी की स्थापना करो। बाबा ने आज्ञा शुरू धारा की और व्यास नदी में जाकर डुबकी लगाई। एक खिला जो हाथ में आई उसे लाकर स्थापित कर दिया, जो आदि शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध है और आज भी श्री महादेव की गुफा में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठा एवं स्थापना के इस अवसर पर अखंड कीर्तन ओम नमः शिवाय के ध्वनि से 24 घंटे आकाश मंडल गूंज उठा। तत्पश्चात विशाल यज्ञ हुआ, जिसके सुगंधि से वायुमंडल पवित्र व सुगंधित होकर झूमने लगा। फिर कन्या पूजन करके बाबा भगवती माँ पार्वती की अर्चना पूजन करते हुए भाव समाधिस्थ हुए। सब भक्तों द्वारा हर हर महादेव की ध्वनि से जोखू नाला गुंजायमान हो उठा। हलवा पूरी व चने का प्रसाद जनता जनार्दन में मानता गया। मंडाला अपनी चरम सीमा को छू गया। 3 दिन लगातार जनता आती रही, मंडाला चलता रहा। श्री राम पंडित जी ने पूजा पाठ हाबर संपूर्ण हो जाने के बाद कहा कि एक समय आएगा जब सामने नीचे वाली सड़क पर मोटर गाड़ियों की कतारें लगेंगी। जनता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, साथ ही साधु व्यक्तित्व के प्रेम से भरे आकर्षण से हृदय सिंह क्या उठता, धन्य है ये बाबा और उनका जीवन। हे मानव, तुम्हे भी ऐसे प्रेमी भक्तों के जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और प्रत्येक जीव तथा मानव, चाहे स्त्री है या पुरुष, अमीर है या गरीब, स्वामी है या सेवक, ब्राह्मण है या चंडाल, सबके प्रति हमें हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। तुलसीदास जी के शब्दों में, सिया राम में सब जग जानी, कहूं प्रणाम जोड़ी दुभ पानी। आगे फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, निज प्रभु में देखी जगत कई सन कहीं विरोध, ऐसे ही थे ये बाबा प्रेम और मोहब्बत के स्वामी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विराम देती हूँ अपने शब्दों को। जय प्रभु गीता माँ।